23 नंबर के रजिस्टर में 20 पेज पर 88 का प्रातः क्लास दूसरे पेज का मध्य, तो समझाते समय बोलना चाहिए कि शिव बेहद का बाप है, नहीं तो कौन है, इनके साथ आपका क्या संबंध है, चित्र सामने रख देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फालतू चित्र नहीं होगा। चित्र जिसका बनता है चरित्र उसका जरूर होता है, और वो बेहदर का बाप जिसकी बेहद में पूजा होती है, विदेशों में भी उसकी खुदाइयों में मूर्तियां मिली हैं, सारे विश्व में जो भी खुदाइयां हुई हैं उनमें शिवलिंग की मूर्तियां मिली हैं, उसमें मुख भी बना होता है, और फिर नग्न मूर्तियां भी मिली हैं जिन्हें तीर्थंकर की मूर्तियां कहते हैं, तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना, सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन विश्व में भी उसकी मूर्तियां मिली। तो ऐसी मूर्ति कौन सी है जिसे सब धर्म के लोग मानते हैं, है? शिवलिंग, लिंग तो मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो हाथ पांव नाक कान होते हैं, तीर्थंकर या शंकर जिसे कहा गया, लेकिन विदेशों में इसका नाम शंकर नहीं है। हर धर्म के लोग एडम और ईव को मानते हैं, सत्य के आदि पुरुष को सब मानते हैं, भारत में भी उसको कहते हैं आदिदेव, आदिनाथ, जैनियों में कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं। तो बेहद का बाप है, उसकी बेहद में मान्यता है, तो ऐसे ही फालतू चित्र नहीं बना दिया गया। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है, और भगवान तो निराकारी होता है, निराकार का मतलब बिंदु नहीं सिर्फ, निराकार का मतलब जब चित्र है और चित्र पर समझाने के लिए बताया कि इनके साथ आपका क्या संबंध है, तो संबंध तो जरूर साकार में कर्मेंद्रियों के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। बच्चे से प्यार किया जाता है, माँ प्यार करती है, बाप प्यार करता है, तो वो प्यार कैसे प्रकट होता है, कोई कर्मेंद्रिया है ना जिनसे प्यार हुआ, बच्चे ने अनुभव किया, बाप ने अनुभव किया, तो साकार के द्वारा ही संबंध साबित होता है ना। तो निराकार का मतलब बिंदु नहीं, निराकार का मतलब है निराकारी स्टेज वाला, ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें अपनी चाहना कुछ नहीं है, खुद कैसा है, निस्वार्थ, जिनको रथ होता है उनको स्वार्थ जरूर होता है, वो रथ तो वह है लेकिन उसमें जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो निस्वार्थ है, निष्काम है, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होती जिसका कोई कामना न हो, एक बेहद का बाप ही है जिससे जिसकी बच्चों से लेने की कोई भी कामना नहीं है। अब वो बेहद का बाप चाहे प्रजापिता हो और चाहे शिव हो, क्यों, क्योंकि जो स्वयं इतना पुरुषार्थी है वो दूसरों से कुछ लेने की इच्छा नहीं कर सकता, जिसके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, नीचे से नीची स्टेज में जन्म लेकर और ऊंचे से ऊंचा पद पाए लेना, चाहे बाबर के रूप में हो, चाहे शिवाजी के रूप में हो, तो ऐसे स्टेज वाला है, इतना महत्वाकांक्षी है, वो दूसरे से लेने की इच्छा नहीं कर सकता। तो निराकार है माना निर्विकार है, निरहंकारी है, निसंकल्प है। निसंकल्प होगा तो कामना रहित भी होगा। कुछ कामना होगी तो कामना होने वाला ये निसंकल्प नहीं कहा जा सकता, उनको बाप कहा जाता है। वो शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, टीचर भी आत्मा बनती है, बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, बच्चों की स्थापना करते हैं, सिर्फ पढ़ाई के वापस नहीं चले जाते। ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि बाप आकर के रथ में आकर पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं और बाकी स्थापना का काम हम करते रहते हैं। नहीं, रथ पर आते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाई पढ़ाकर स्थापना भी करते हैं, चले नहीं जाते। बाप तो कलयुग का नाम निशान ही नहीं है, मनुष्य कहां से जाएंगे? सब सेवल बच्चों को सारा दिन ख्यालात चलते रहते, सर्विस नहीं करते, तो समझा जाता है बुद्धि इनकी चलती नहीं है। ज्ञान में इनकी बुद्धि अभी ज्ञान में नहीं चल रही है, ज्ञान में नहीं चल रही तो कहां चल रही है? दुनिया में चल रही है, अज्ञान में चल रही है। पकड़ा गया, जैसे बुद्धू बैठे, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? स्वर्ग के सोने के मेहलवानियों का वर्षा नहीं बताया तो सोने में लागत लगी हुई हो, कौन सा वर्षा बताया? बुद्धि का। बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, तो हद का वर्षा नहीं देता। पहले शारीरिक वर्षा नहीं देता, कौन सा देता है? देहद का, आत्मा का, मन बुद्धि का वर्षा देता है। मन बुद्धि ऐसी सेट हो जाए, मन मना भव, जिसमें मनन चिंतन मंथन चले ज्ञान की बातों का और दुनिया भूलती जाए, दुनिया के पदार्थ और देह के संबंध सब से बुद्धि डिटैच होती जाए, तो ये बेहद का वर्षा बाप आकर के देते हैं। माना मन बुद्धि की सदगति करते हैं, कोई शरीर की सदगति पहले नहीं होती। तो पतित पावन बाप को याद करने से ही ये वर्षा मिलेगा बेहद का। याद करते करते मरेंगे तो बाप की मिल्कियत साफ मिल जाएगी। हैं? मरेंगे माना जीते जी मरेंगे। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, मर करके स्वर्ग में जाएंगे या जिंदा ही चले जाएंगे? वो तो भक्ति मार्ग में ही गायन है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। वो तो समझते नहीं कि मरने का अर्थ क्या है। वो भक्ति मार्ग वाले तथाकथित ब्राह्मण भी समझते हैं, जो मरता जाता है तो स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग का हकदार हो गया। ऐसी बात नहीं, सिर्फ मरने मात्र से, शरीर से मरने मात्र से स्वर्ग में नहीं चला जाता, लेकिन जीते जी इस पुरानी दुनिया के संबंधों से, इस देह से और देह के पदार्थों से ममत्व जिसका मिट जाता है, वो अपने को इस दुनिया में रहते हुए भी स्वर्ग में सुख की स्टेज में अनुभव करता है। तो बाप की ये मिल्कियत है बेहद की। बच्चों के पास बैग भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। क्या कहा, बहुत कब आते हैं? कोई मरता है तो बहुत आते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है। जब कोई जीते जी मरते हैं, बाप के बनते हैं, तो उन्हें देख करके बहुत आते हैं। तो जो आते हैं देखने वाले, ये दुनियादारी छोड़ करके बाप के पास कैसे मर करके रह रहे हैं, तो उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। किनों की? जो देखने वाले के लिए आते हैं, मरने के लिए नहीं आते। पहले पहली बार आते हैं तो मोस्टली देखने के लिए, ऐसे नहीं झाटकू हो जाएंगे पहली बार में ही जाके, झाटकू हो गए। अच्छा मालूम पड़ेगा अब, हो गए अभी मालूम पड़ेगा अभी परे। परीक्षा का मैदान तो सामने है, सामने क्या बल्कि साथ में। तो जो आते हैं उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। मरे नहीं है लेकिन मरने के लिए, हाँ नहीं सोचते हैं और देखने के लिए आते हैं कि जो मरे हैं उनको देख तो आए। दुनिया में भी किस लिए जाते हैं? देखने के लिए जाते हैं कि कैसा मुर्दा बना है। तो यहाँ भी बाप के आप पास आकर के जो मरते हैं तो उनको देखने के लिए आते हैं। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, बैज पर समझाने की बात चल रही है ना, तो बैज पर उनको समझाओ। बैज कौन सा? त्रिमूर्ति का, तीन मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो जड़ बैज नहीं। तो पाकेट में बाहर निकाल के डाल लो, पाकेट में बैज पड़ा रहे तो पाकेट ये स्थूल पाकेट नहीं, स्थूल बैज नहीं। ये तो बुद्धि में जानकारी की बात है। वो तीन मूर्तियों की पहचान, जानकारी, ज्ञान वो बुद्धि में पड़ा हुआ हो, बुद्धि रूपी पाकिट में। और जब कोई ऐसे देखने वाले आए कि देखें ये कैसे मरे, तो बुद्धि रूपी पाकिट में से वो तीनों मूर्तियां निकाल करके उनको दिखाओ, ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु और ये है शंकर। हैं ऐसे नहीं मर गए। और उन तीनों मूर्तियों में दिखाओ कि शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भले बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। ब्रह्मा कोई गुप्त नहीं होता, ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष होता है। फिर गुप्त कौन हुआ? तीनों मूर्तियों में गुप्त कौन सी है मूर्तियां? ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष होता है, माँ है ना, माँ होती है साकार, तो साकार तो प्रत्यक्ष देखने में आएगा। विष्णु है सतयुग का, तो वो तो यहाँ कलयुग में मूर्ति देखने में, इन आंखों से देखने में नहीं आएगी, बुद्धि से समझ सकते हैं कि विष्णु का पार्श्वधारी कौन है। और फिर शंकर, शंकर को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वंडरफुल पार्ट है। कौन सी आंख से देख सकते हैं? त्रिनेत्री को तो तीसरे नेत्र से ही देखा जा सकता है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा गुप्त है,
तुम गुप्त भी समझा सकते हो, जो गुप्त है उनको भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। क्या करो? और सब चित्र उठा दो।
क्यों?
अभी बैज रखने के लिए कहा, समझाने के लिए, फिर कहा कि शिव का चित्र रखो और सब उठा दो। ये क्या बात हुई? उसके कर्तव्य मुरली में तो बोला है शंकर का कोई पार्ट नहीं, शंकर को चित्रों में सिर्फ याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। जब कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करता है हुआ ही नहीं दिखाया जाता, तो उसका पार्ट कहाँ हुआ? बुद्धि से याद करने को कोई कर्मेंद्रियों की हलन चलन का स्टेज पर पार्ट में कहा जाएगा? स्टेज पर पार्ट बजाते हैं तो कर्मेंद्रियां कुछ न कुछ चलती है। फिर कहीं कहीं मुरली में बोला है शंकर का इतना पार्ट नहीं है, इतना माना जितना और मनुष्यों का पार्ट होता है उतना पार्ट नहीं है, माना थोड़ा बहुत है। मतलब गुप्त की तरफ इशारा किया कि है, लेकिन जो भी पार्ट है वो कोई आंखों से देखने योग्य नहीं है। तो गुप्त को भी तुम समझा सकते हो, उसके गुप्त पार्ट को भी तुम समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। समझाए कब सकते हो? जबकि शिव का चित्र रखो। कैसे रखेंगे शिव का चित्र? बिंदु बनाए दें और बिंदु के आसपास गोला बनाए दें, वो चित्र थोड़े ही है, वो तो है विचित्र। चित्र कैसे रखेंगे शिव का? सात चित्र उठाए दो, सिर्फ एक चित्र रखो। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि चित्रों को जब आंखों से देखते हैं तो वो याद जरूर आता है। चित्र किस लिए बनाते हैं? दर्शनार्थ, स्मरणार्थ, महिमार्थ, ये तीन अहम ऑब्जेक्ट हैं चित्र रखने के। चाहे वो ब्रह्मा का चित्र बनाया जाए और चाहे शिव बाबा का चित्र बनाया जाए, वो स्मरण जरूर आएगा, स्मृति में आएगा, देखने में भी आएगा और उसकी महिमा भी होगी। तो सब चित्र उठा दो। किस लिए उठा दो? कि सब को रखेंगे तो सब याद आएंगे। और एक एक सदगुरु का ही चित्र पॉकेट में रखेंगे तो एक ही याद आएगा। इसलिए बताया कि और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप है, टीचर है, सतगुरु, ये एक ही चित्र है। ऐसे नहीं कि बाप का चित्र अलग है और टीचर का चित्र अलग है और सदगुरु सदगति करने वाले का चित्र अलग है, नहीं है। तो तीनों एक ही रूप, चित्र तो एक ही है, लेकिन टाइम टू टाइम पार्ट अलग अलग बजाता है। कभी बाप का पार्ट, कभी शिक्षा देने वाले टीचर का पार्ट, और लास्ट में सदगति करता है सदगुरु के रूप में, सख्त पार्ट बजाता है। तो ये बाप आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने, उस एक चित्र की तरफ इशारा करो। बैज के लिए बताया था, बैज में भी तीन चित्र हैं, फिर कहा एक ही चित्र रखो, तो कौन से चित्र की तरफ इशारा किया? ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने, ये माने कौन? ब्रह्मा। जिस ब्रह्मा का चित्र रखा है उनके द्वारा तो नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई। आते नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं, ऐसे नहीं कि कलयुग में आएंगे, कलयुग के अंत में नहीं। संगम में भी जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला होता है, ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा ही पतित पावन है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। क्या? मेरे साथ आकर मिलेंगे। आकर मिलेंगे माना चिपक जाएंगे क्या? वो भी चित्र बनाया हुआ है। शंकर और पार्वती का कैसा चित्र बनाया हुआ है? अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष रूप आधा स्त्री रूप बामंगी। तो तुम मेरे से आकर मिलेंगे माने स्वभाव संस्कार से एक हो जाएंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नाली से ही बने। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वो कैसे आते हैं? कौन कहेंगे हैं? जिनकी बुद्धि में निराकार का सही अर्थ नहीं बैठा है वो क्या कहेंगे कि वो तो निराकार है, वो कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती है? वो भी ऊपर से आती है ना आत्मा है। आत्मा भी जब ऊपर से नीचे की स्टेज में आती है तो पार्ट बजाती है। तो परमात्मा वो भी आता है, आता है ऊपर की स्टेज से। कहाँ आता है? नीचे आता है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती का भी मजा हाँ तू भी चाह के देख। हम तो मुसीबत में पड़े हुए हैं, हमारा डूबना तो डूबना हो गया। तो चैलेंज देते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो वो भी ऊपर से आती है ना, आत्मा आती है पार्ट बजाने, तो बाप भी आकर के समझाते हैं। अब बैल पर तो आ न सके, उन्होंने तो भक्ति मार्ग में किसको दिखाई दिया है? बैल दिखाई दिया है शास्त्रों में और चित्रों में, बैल बनाई दिया है। यादगार किसकी है? कहाँ की है? संगम की यादगार है। शिव तो ज्योति बिंदु, वो जानवर बुद्धि में आएगा, पत्थर ठिककर बुद्धि में आएगा या मनुष्य में आएगा? परमात्मा बाप पहले मनुष्यों का आकर उद्धार करेगा या पत्थर ठिककर या जानवरों का उद्धार करेगा? पहले तो मनुष्य, मनुष्य सुधरता है तो सब जानवर भी, जानवर बुद्धि भी सुधर जाते हैं। और मनुष्य बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल मनसा के द्वारा बनाने वाला कौन? मनन चिंतन शक्ति जिसमें होगी वो मनुष्य, और जिसमें मनन चिंतन शक्ति नहीं वो मनुष्य नहीं, क्या होता है? बैल। तो शिव के मंदिर में बाहर की ओर बैल भी रख देते हैं। तो शिव किस में प्रवेश करता है? बैल में। बैल में कैसे प्रवेश करेगा? बैल पे कैसे सवारी करेंगे? इसलिए मुरली में बोला, बैल पे सवारी कैसे करेंगे? लुढ़क जाएगा। तो काय पे सवारी दिखाइए। शिव की सवारी शंकर पर, और शंकर की सवारी चित्रों में बैल पर दिखाई जाती है। सवारी करने का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल करना। सवारी करना माना कंट्रोल करना। तो परमात्मा बाप का भी अपना कंट्रोल करने के लिए सवारी चाहिए। वो आकर के कंट्रोल करता है किसको? शंकर को। और शंकर किसको कंट्रोल करता है? बैल को। बैल के ऊपर सारा वजन सच रूपी गाड़ी का डाल दिया जाता है। बैल जो है वो भारतीय परंपरा का बहुत श्रेष्ठ सूचक है। बैल धर्म की स्थापना का अंग माना जाता है, तो बैल पर तो आ ना सकेंगे, बोलेगा कैसे? बैल कैसे बोलेगा? हैं? साधारण बूढ़े तन में आते हैं, फिर आते ही खुद ही पूछते पूछते पूछ पड़ेंगे, मुझ पड़ेंगे, तो बात करने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। क्या कहा? हाँ है, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं, कोई काम नहीं जो हम करते ना हो। क्यों बालकराम? है, हम तो सब कुछ करते हैं, युक्ति से चलना होता है, किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे, कोई को नाराज भी नहीं करना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है, है? तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, सर्विस की कमी नहीं है, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, जड़ गंगा जी पर नहीं। हाँ बोलो, ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? पानी का मंथन करो क्या निकलेगा? है, पानी का मंथन करने से मक्खन निकलता है क्या? नहीं, तुम्हें सार निकालना है, मक्खन लेना है, मोटा ताजा मजबूत हट्टा कट्टा बनना है, आत्मा को पावरफुल बनाना है, तो काय में स्नान करो? नहीं, सागर में स्नान करो। हाँ, ज्ञान सागर में। बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पानी में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? पानी में कोई सार सार नहीं होता। तुम तो भगवान को कहते हो पतित पावन, आओ आकर के पावन बनाओ, फिर वह भगवान पतित पावन है या ये गंगा पतित पावनी है? एक तरफ कहते हो भगवान आकर के पतित से पावन बनाओ, खुद आओ हम नहीं तुम्हारे पास जाएंगे। संग का रंग लगाने के लिए भी खुद आओ हमारे पास। अच्छा, और गंगा के पास फिर खुद जाते हैं, समझते हैं ये पतित पावनी है। ऐसी नदियां तो ढेर हैं। कैसी नदियां? पानी की, जिनमें पावर देने वाला मक्खन कुछ भी नहीं निकल सकता। बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव है ही है, सत्युग में भी, त्रेता द्वापर कलयुग में भी, लेकिन सागर बाप, वो ज्ञान सागर बाप तो सिर्फ एक ही बार आते हैं। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, और नदियां वो तो हमेशा ही है, आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, साधारण संगम में नहीं, पुरुषों को उत्तम बनाने वाले युग में, जहां आत्माएं उत्तम उत्तम कौन सी है उनको प्रत्यक्ष करने, यानी फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला को डिक्लेयर करने, वहां कोई पतित नहीं होता है, नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया, इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ नहीं सकता। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं, बुद्धू भी ना बनो, अमरनाथ पर भी कहते हैं कबूतर होते हैं क्या? भी क्यों लगा दिया? अमरनाथ पर भी ऐसे नहीं, अमरनाथ पर ही कबूतर होते हैं, यहाँ भी कबूतर बुद्धि होते हैं। सुनते रहेंगे और मुख से आवाज आवाज नहीं निकलेगी गले से, गले की आवाज गले के अंदर ही गुटरू। हाँ, उनके गले में बांध दो संदेश तो गले में बांध करके ले जाएं। कहते ना गले पड़ गई, अपनी दिल की इच्छा नहीं है सर्विस करने की, अपना लगाव कोई दूसरी दूसरी बातों में लगा हुआ है, लेकिन कोई गले में बांध देता है तो कबूतर बुद्धि जो है, कबूतरों का काम तो है गंध करना, शिवलिंग के ऊपर ही बैठ करके चौटाया देंगे। उनकी रग सर्विस करने की नहीं है, दूसरों को बाप का संदेश दे, ये रग अपनी नहीं है, लेकिन उनके गले में बांधा जाता है। कहते ना, तो गले में बांध गई, बंध गई जो चीज, तो वो तो लटकाए लटकाए फिर नहीं पड़े। तो कबूतर जो है उनके गले में संदेश बांधा जाता है, तब वो दूसरों को संदेश देते। ये सब ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया की ही बातें हैं।
तो शिव के मंदिर में रहने वाले चैतन्य शिवालय में रहने वाले चैतन्य जो कबूतर हैं, वो सर्विस फील्ड में जाना नहीं चाहते, सर्विस करना नहीं चाहते। उन्हें तो क्या प्यारा लगता है, शिव का मंदिर में बैठना ही प्यारा लगता है, जहाँ आराम से हम बैठे बैठे हाँ 56 प्रकार के भोग भी हैं, क्योंकि शिव के ऊपर भोग तो बहुत करते हैं और वही गंध करते रहे, तो उनके गले में बांधा जाता है। तो एडवांस पार्टी जब निकलती है तो उसके फोर्स से कहीं उनका प्रभाव ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो हमारी रोटी दाल बंद हो जाए। तो इस डर से संदेश देने से फील्ड पर निकल पड़ते, कुछ न कुछ तो करना पड़े, नहीं तो प्रभाव बढ़ जाएगा। तो पांच पंड शो के धंधे जो है वो तो करते हैं दिखावे, यानी दिखावे की सर्विस करेंगे, लेकिन जो राज्यों की असली सर्विस है, इंडिविजुअल सर्विस करके एक एक को राजा बनाना, स्वाधीन बनाना, वो सर्विस करेंगे, क्योंकि दूसरों को पराधीन बनाने की सेवा करेंगे, प्रजा बनाने की सेवा करेंगे। जो बाप का धंधा है राज्य, वो किसी को सिखाए नहीं। तो अमरनाथ पर भी कहते हैं कबूतर होते हैं। अमरनाथ है तो ऊंची से, लेकिन बाद कबूतर होते हैं मंदिर में, विज्ञान पैगाम पहुंचाते हैं। पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, क्या वो चीज हो रही ऊपर से पैगाम लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं इसको, कबूतरों को सिखलाया जाता है। उनकी अपनी रग नहीं होती है, उनके पाव में जिसका दिखाते जैसे किसी के पांव में देरी पड़ जाए, पांव में बांध देना या गले में बांध देना बात एक ही है, उनके पांव में निकल के बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रूप से जाना मिलता है, ज्यादा सहज रूप अपना खाना कमाना तो पड़ता नहीं है, बैठते बैठता ही आराम से मिलता है, वहां पता चले जानकार नहीं ज्यादा। अब कबूतर बनना है कि पंछी वाले तोता बनना है, मंदिर में दोनों होते हैं। दिखाते हैं छात्रों कि ज्ञान की पंछी वाले तोते भी दिखाए हैं, जो जाते हैं मंदिर में कथा सुनते हैं और बाहर जाकर के चारों तरफ आवाज करते हैं। वो ज्यादा नहीं बचते कहा मंदिर और कितनी भी होते हैं, वो मंदिर में ही बैठना पसंद करते हैं। किसी को कथा सुनाना आवाज करना संसार में उनको पसंद पसंद। जब अन्य रूप से बंदे से भिजवाया गया वो दूसरी बात, तो उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहां भटकने की दरकार। तुमको भी यहां दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है जिस की बाधिकारी जो यहाँ से हमको मिलती है। दाना तो कबूतरों को भी मिलता है, उनको कौन सा दाना मिलता है और तुमको कौन सा दाना मिलता है। वो फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर मिल जाते हैं। यादगार तो मौजूद होनी चाहिए। तुम तो चैतन्य हो, वो तो जड़ बुद्धि कबूतर है और तुम तो चैतन्य हो। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्र में भी है क्रियाओं ने सागर को सिखाया, सागर को सुखाने का काम किसने किया? क्रियाओं बहुत कठिन मन से करेंगे तक ऐसी होंगी कोई चिड़िया, सिंगल चिड़िया वहां भी जिन्होंने सागर को भी पी लिया। शास्त्र ने दिखाया ना कि उन्होंने सागर को पी लिया किसने ना, मुनि ने। उन्होंने देखा, अगस्त मुनि ने देखा एक कंस पक्षी जो है वो किनारे पर बैठा हुआ एक बूंद लेता है और जमीन पर डालता है और लगातार ये क्रिया कर रहा है। तो ये क्या बात है? तो गए पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कंस पक्षी ने कहा इतने हमारे सब अंधी बच्चे बाहर निकल गए, इसलिए हमको क्रोध आ गया, हम इसको सुखा देंगे। करके कहां पीजिएगा? तो मुनि जी महाराज को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने कहा अरे तू कहां बुद्धि करके खाली करता रहेगा, कभी जन्म जन्मांतर नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने लिया और सागर को पी लिया। तो लिया तो उन्होंने किसने सागर ने किया, लेकिन वास्तव में उसका पहला संकल्प किसने किया? पीने का संकल्प किसने किया? तो उनका गायन हो गया कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। हप कर लिया या हप कराई दिया बात ये थी, कोई हत्या करे और हत्या कराई तो कराने वाला भी तो इसमें शामिल है ना। तो मनुष्य तो ऐसे ही सत्य सत्य कह देते, फिर कहते हैं सागर से देखा सागर से कौन निकले? देवताएं निकले। अरे कहां दिखाया? जब रावण पर हमला करने चले समुद्र का पुल बांधने से पहले, तो समुद्र को जब कहने से नहीं माना तो फिर उन्होंने बाण लेकर के उसको सुखाने का संकल्प कर दिया। वो भयभीत हो गया कि हमारे अंदर जितने भी जल जंतु हैं वो सब जलमर खलास हो जाएंगे। वो देवता का रूप धारण करके समुद्र में से देवता निकला कथा कहाँ की है? सागर में से देवता कैसे निकलेगा? यह ज्ञान सागर परमात्मा शिव और वो ज्ञान सागर परमात्मा शिव जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं ही देवता का रूप, देवता का रूप धारण करता है। तो सागर के देवता ने रत्नों की थालियां भर भर कर ले आए, ले आए कौन से रत्नों की? जब रत्नों की थालियां भर भर करके देने लगा दक्ष तो कहेंगे दक्ष वो ऐसा हुआ होगा जिसकी थाली भर करके रत्नों की होगी। अब समुद्र की देवता कैसे निकलेगी? ये बात कहां की है? यहाँ संगम की, तो समुद्र से ही सागर से ही ज्ञान रत्न निकलते हैं जिनको धारण करने वाले फिर देवता बन जाते हैं। समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? उस सागर की बात नहीं है, उस ज्ञान सागर की बात है जो उसमें मन बुद्धि से रहता है गोता लगाकर, वो लगातार उसके संग से रंग से मनुष्य से देवता बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में तो कुछ भी समझते नहीं है, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते हैं और झूठ ही सुनते हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी छाया झूठा सब संसार। सत्य और झूठे संसार में कितना राज करता है, झूठ बोलते बोलते इंसान व्यक्त करते हैं कितना ग्लानि कर दिया है। कौन झूठ बोलने वाले इतनी ग्लानी करके आए हैं ईश्वर तरफ जाती है। हम क्या समझाते हैं लोगों को? हम कहते हैं परमात्मा एक तन में आया हुआ है पुकारने में, वो कहते हैं परमात्मा तो कण कण में तरफ जाती है, मेरे में भी है तेरे में भी है। तो ये सर्वव्यापि कहना कितनी बड़ी ग्लानी है। जो एक व्यापी होकर के आता है मुकर्र रथ में उसको सर्वव्यापी साबित कर देना, ये बहुत बड़ी ग्लानी हो गई। ग्लानी किस बात से? कि एक रूप में अगर बुद्धि टिकी हुई होगी तो आपकी विचारी याद आएगी, और अनेकों रूप में व्यापक समझ लिया तो विचारी याद हो गई। तो तुम कितना युक्ति से समझाते हो फिर भी पोतों में कौन कोई बुद्धि में बैठता है? तब की बुद्धि में ये सर्वव्यापी वाली बात बैठती नहीं है। है तो बहुत सहज ज्ञान और सहज योग बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी दृष्टि बुद्धि में आ जाए। बाप की शिष्य क्या है? बाप का पहला काम है, पहली शिष्य है टीचर ऊपर का बाप है तो ज्ञान का बीज बोएगा। तो जो बाप के मन बच्चे होंगे उनके अंदर भी ये शिक्षा आएगी क्या? पहली पहली बाप के जो बच्चे बनेंगे उसकी पहली पहचान फर्क है कि बाप के बच्चे कौन बनने वाले हैं और कौन बच्चे नहीं बनने वाले हैं। भले कुछ भी करें, नीचे पत्र लिख करके देगा कुछ भी करें, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक वो ज्ञान का बीज न बोले। याद करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं और तरफ की चीज आती है याद बोल करेगी। जिन्होंने बाबा के तीनों रूपों को समझा, बाप के रूप में पहला रूप है टीचर ऊपर का और लास्ट का रूप है वर्षा देना, सुख शांति का वर्षा देना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देना, किसी पर मुक्ति की स्टांप लगाना और किसी पर जीवन मुक्ति का स्टांप लगाना। तो ये शिक्ष बच्चों के अंदर भी आएगी। टीचर बाप टीचर भी है तो टीचर की शिक्ष क्या है? टीचर खुद भी पूरे पाठ के दूसरे हिस्से को समझने वाला होगा और दूसरों को दूसरे हिस्से करके समझाएगा भी। हर शब्द के अर्थ को जैसे समझेगा और भी स्वयं की दिशा दी और सदगुरु का पास सदगति करने सदगति करके अपने घर वापस। तो बच्चों का भी पाप क्या है? मन बुद्धि की सदगति करें। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा उनके रास्ते पर लगी हुई है, मनुष्यों की भक्ति में भटकी हुई है, उनको ठिकाना दें। और जो मन बुद्धि एक परमात्मा बाप की अति विचारी आती है, ये हुई उनकी मन बुद्धि की सदगति। तो जो बाप की इच्छे हैं सतगुरु की, बाप की शक्ति जो बच्चों में दिया है, अपनी जांच करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि और तरफ तो नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ नहीं है, कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बतलाते हैं, तुम कोई को बैठ करके समझाएंगे फिर तुम्हारी दुश्मन भी नहीं बनेगी। दुश्मन भी कब बनेंगे? समझाएंगे नहीं, जो जबरदस्ती करना चाहेंगे तो दुश्मन बनेगी। अगर अंदर से ये भाव है किसी करेगी आत्मा समझ जाए तो बाबा ही तुम्हारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, उनको याद करो। ये बात अगर समझाएंगे तो तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं बने। परंतु ये रथ देख करके कितना गाली दे, समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, ज्यादा गाली कौन से चित्र को देख करके देते हैं? ब्रह्मा के रथ को चित्र को देख करके गाली क्यों देते हैं? है? नहीं, ब्रह्मा के चित्र को देख करके मुझते हैं, गाली देते हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा में ब्रह्मा के चित्र की पूजा नहीं होती, उसके मंदिर नहीं बने हुए हैं, उसकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती। बाकी जितने अंधेर में मूर्ति की पूजा नहीं होती, अजमेर में पूजा होती है तो ठीक है, क्यों पूजा होती है वहां? क्योंकि अजमेर का नाम ही रखा है भेड़ बकरियों का देश, मेड़ा और आजा, आजा माने बकरा। तो भेड़ बकरियों के देश में तो है हाँ जानवर की पूजा होगी। बैल किसको बताया? बैल उसको बताया जिसकी बुद्धि नहीं चलती। मुरली में बोला विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई और बोला कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो बुद्धि चलनी चाहिए ना, क्या करनी चाहिए कि कैसी दुनिया का विनाश होगा, कौन सी दुनिया का विनाश होगा, ये बुद्धि नहीं चलनी। अगर उस समय जिस समय ये घोषणा हुई थी और बुद्धि की देवी सरस्वती उस समय मौजूद होती तो दुनिया वालों को ये मेमोरेंडम नहीं देने देती। लेकिन मम्मा की बुद्धि तीक्ष्ण थी, प्योरिटी की पावर थी, और ब्रह्मा तो फिर भी पुरुषतन था। पुरुषतन को बाबा ने मुझे बताया दुर्योधन दुशासन था, पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा का रथ जो है वो तो बैल साबित किया। तो ब्रह्मा के चित्र के पीछे बहुत पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का चित्र की पूजा नहीं, कारण कहाँ से बना? भक्ति मार्ग में जो भी बातें दिखाई गई वो कहाँ की यादगार है? संबंधित की यादगार। तो आते ही उस बात पर आ जाए, इस बात पर हुँ? इस बात पर आ जाए रथ देख कर गिलानी करते हैं, देखने मात्र से ही गिलानी होती है। आज की कोई विशेष मान्यता नहीं है तो समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। कौन सी युक्ति रची? ये युक्ति बताई कि विष्णु और शंकर की पूजा क्यों होती है, उनके चित्र क्यों बनाए जाते हैं, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं,
वो यहाँ की बात है। शिव का चित्र देखकर कभी उसे उड़ाएंगे नहीं। अगर शिव का निराकारी स्टेज वाला चित्र उनको देखने में आएगा तो कभी भी उसको उड़ाएंगे नहीं, उखाड़ेंगे नहीं। ब्रह्मा के चित्र कैसे थे? एक भी चित्र साकारी स्टेज वाला नहीं, वो निराकारी स्टेज वाला नहीं। ब्रह्मा की फोटो तो ढेर खींचे गए, लेकिन उन फोटो में एक भी निराकारी स्टेज वाला नहीं। इसलिए निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी गाया जाता है। उसी की पूजा होती है, उसी की मान्यता होती है। उसको कोई उखाड़ेगा नहीं, उड़ाएगा नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि देखने में आ रही है आत्मा की स्टेज, परीक्षा ही स्टेज, तो उसका विरोध कोई नहीं करेगा। तो बाप को याद करो, तो याद करो बाप को, याद करो अम्मा को, याद नहीं करो। माना ब्रह्मा के रूप को जो याद करते हैं भगवान समझ बैठे हैं, गीता का भगवान कृष्ण समझ बैठे हैं, ये रंग बात। गीता का भगवान तो निराकार बाप ही है, उस बाप को याद करो। तो इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। वैद्य के चित्र पर समझाने की बात हो रही है सारी, तो इनके मैंने किस पर इशारा किया है? इनसे बहुतों को फायदा होगा। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। त्रिमूर्ति के चित्र में ये नहीं कहा इनको, माना ब्रह्मा को। हाँ, इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। सबका बाप है, ऐसा मनुष्य शक्ति तो एक भी नहीं है जिसका ये बाप न हो। अब उसके नाम अलग अलग होते हैं, किसी ने एडम नाम दिया है, किसी ने आदम, किसी ने आदिदेव, किसी ने आदिनाथ, कोई नहीं संकल्प। एक बाप के सिवाय कोई भी याद नहीं आता। और संत तो एक संत तो माना, और बिल्लियों का साथ छोड़ दो और एक बिंदी का संग करो, कैसे पता चलेगा कि दूसरी बिंदियां कौन सी हैं और एक बिंदी कौन सी? बिंदी बिंदी आत्मा तो सब एक जैसी, तो पता तो तभी चलेगा जब साकार में आकर के निराकारी स्टेज वाला पार्ट मिले। तो और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। ये है किसका कल्याण करने की युक्ति है। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बने? कंप्लेंट भी करते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? हाथ पाँव बांध करके बैठते भी हैं घंटों, फिर भी याद नहीं आता, तो कैसे का जवाब क्या दो? कि वो ज्योति बिंदु शिव परमात्मा पार्थधारी जब बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है तो साकार में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला होता है। उसी से संबंध जोड़ने की बात है। और संबंध जब जुड़ता है वो याद जुड़ जाता है। संसार में भी ऐसे होता है, कन्या की सगाई जब हो जाती है तो जहाँ सगाई हो जाती है संबंध जुड़ता है वो स्वतः ही याद आता है। तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेगी? और याद भी कैसी? ऐसे नहीं थोड़े समय एक घंटे याद आ गई और फिर 23 घंटे दूसरों की याद आई। आपने भी क्या किया? मां ने कम सब भी गलती ना, और टूटी टूटी याद भी नहीं। निरंतर याद करो, सब भी गलती ना होंगे, तो निरंतर भी हो और रह भी। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। क्या मित्र संबंधी आदि कहाँ आते हैं? घर में ही आएंगे ना। जो हमारे मित्र संबंधी होंगे वो ही हमारे घर में आएंगे, बिना बुलाए भी आएंगे। और हमारे नहीं होंगे मित्र संबंधी तो हमारे घर में कैसे आ जाएंगे? तो बहुत मित्र संबंधी तुमको घर में ही मिलेंगे। कब मिलेंगे? संगम पर ही हमको भौतिक से संबंधी मिलेंगे, सिर्फ हम आत्म के प्रेम में स्थिर होने वाले बाप के बच्चे बन जाएंगे। दे अभिमान को छोड़ दे, आत्माभिमानी बच्चे बन जाएंगे। दिन दिन युक्तियां रखो, बहुतों का तुम कल्याण कर सकते हो, घर में बैठ करके भी। कोई इधर उधर धक्के खाने की दरकार दरकार की नहीं। हस्ती तो एक ही है और कोई हस्ती है ही नहीं जहाँ से सबका कल्याण हो। हट्टी माना दुकान, तो जाएंगे कहाँ जब एक ही हट्टी है? अच्छा, मीठे मीठे शिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग किसके प्रति? मीठे मीठे पहली शर्त, कड़ुए बच्चों के प्रति नहीं, मीठे बच्चों के प्रति। और दूसरी बात, शिकिले माने बहुत लंबे समय के बाद कोई प्यारा बच्चा मिलता है, जैसे कोई पापा का बच्चा खो गया हो और बड़े लंबे समय के बाद कहीं मिल जाए अचानक, तो क्या करेंगे? बड़े सिक से, बड़े प्यार से मिलेंगे। तो शिकिले बच्चों प्रति माता पिता का,
जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले उसे उसको विश्व की बाधा ही मिलती, तो विश्व का बाधा वो हाथ जोड़ करके एक एक के सामने झुकता फिर ये भी बहुत इंटेलिजेंट है क्या।